हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 18, टेक्स्ट नंबर 61। बहुत ही सुंदर श्लोक है, कृपया इन पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां रिक्तेषु न तिष्ठति, ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां रिक्तेषु न तिष्ठति, ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां रिक्तेषु न तिष्ठति, ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां रिक्तेषु न तिष्ठति, ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां रिक्तेषु न तिष्ठति, ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। कृपया शब्दों का अर्थ देखिए। ईश्वर यानी भगवान या फिर परमात्मा सर्वभूतानां समस्त जीवों के हृदय से, हृदय से मतलब हृदय के अंदर, अर्जुन हे अर्जुन तिष्ठति, यानी भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में वास करते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, ब्राह्मयन सर्वभूतानि, ब्राह्मयन मतलब भ्रमण करने के लिए बाध्य करता हुआ, जो मनुष्य जो भी जीव जो कार्य करते हैं उनको निर्देशन दे रहे हैं। ब्राह्मयन सर्वभूतानि समस्त जीवों को यंत्र, यंत्र में आरूढ़ानि सवार यानी चरे हुए, और मायाया भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर। अनुवाद देखिए, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा यानी भरमा रहे हैं। कृपया इन पवित्र शब्दों को ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए हम गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए हृदय से समस्त भौतिक आसक्ति और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमल श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथ वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितास्स हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचनम गारंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरु भयस्य कृपा सिंधुभ्य पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता की जय हो। अष्टदशोध्याय संन्यास की सिद्धि द परफेक्शन ऑफ द रिनाउंसिएशन। आज भगवान हमें संन्यास की सिद्धि के विषय में बता रहे हैं कि परफेक्शन क्या है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक नंबर 61 बहुत ही सुंदर शब्द है भगवान के, एकदम सार ग्रहत जो मतलब सार है ना पूरे अब तक जो हमने पढ़ा है उस श्लोक में भगवान हमें बता रहे। भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां रिद्देशे जनतिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित है, बैठा हुआ है अंदर और क्या कर रहा है भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। जिस प्रकार किसी यंत्र के अंदर, किसी कन्वेंस के अंदर, किसी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ होता है ड्राइवर, उसको कैसे चला रहा होता है, उसी तरह भगवान अंदर से हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, हमें भगवान अंदर से ना बता रहे होते हैं कि आपको क्या करना है और उसी हिसाब से समस्त जीव जो है वो कार्य कर रहे होते हैं। क्योंकि पिछले हमें अपने जीवन के विषय में नहीं पता होता है, लेकिन क्योंकि अब उसी के कर्मों के फलों के अनुसार हमारा ये जीवन है, हमें याद नहीं है लेकिन हृदय में बैठे बैठे वो हमें गाइड कर रहे होते हैं कि अब इसके साथ तुम्हें ये हिसाब किताब पूरा करना है, इसके साथ ये करना है। बहुत ही सुंदर श्लोक है, श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद श्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अर्जुन परम ज्ञाता ना था और लड़ने या ना लड़ने का उसका निर्णय उसके क्षुद्र विवेक तक सीमित था। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीव आत्मा व्यक्ति ही सर्वो सर्वे सर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा के रूप में स्थित होकर जीव को निर्देशित देते हैं। बहुत ही सुंदर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन को, क्योंकि परम ज्ञाता का मतलब होता है कि उससे ऊपर, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना, यदि अर्जुन ने 13.1 में भगवान से पूछा था प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्विदितुमिच्छामि ज्ञानं येयं च केशव। तो भगवान ने बताया था इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विधि। अर्जुन ने क्या पूछा था, मैं प्रकृति एवं पुरुष क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञाता और ज्ञान एवं ज्ञान के विषय में जानना चाहता हूँ, ज्ञेय के विषय में। तो भगवान ने क्या कहा, इदम शरीरम कौन्तेय, ये जो शरीर है क्षेत्रमित्य विधि, ये क्षेत्र है और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ यानी ज्ञाता है। लेकिन बाद में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने थर्ड श्लोक में बताया था, देखो बताया था क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं तज्ज्ञानं मतं मम। तो भगवान ने क्या कहा था कि हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों का ज्ञाता हूँ। यानी कि सुप्रीम ज्ञाता कौन है, पहले तो अर्जुन को यानी कि जो आत्मा उसको ज्ञाता बोला, लेकिन क्या बोला कि परम ज्ञाता कौन है, मैं। भगवान ने कहा मैं इस शरीर के अंदर एक परम ज्ञाता हूँ और शरीर तथा इसके ज्ञाता को जानने का, जान लेना ज्ञान कहलाता है। तो भगवान ने पहले ही बता दिया कि परम ज्ञाता मैं हूँ। तो आज श्री प्रभुपाद जी याद करा रहे हैं कि अर्जुन परम ज्ञाता नहीं था, परम ज्ञाता कौन है, जो अंदर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं ना परमात्मा के रूप में, वो परम ज्ञाता है। और क्या करते हैं, भगवान कृष्ण अपने उन्हें उपदेश दिया कि ये जीव आत्मा सर्वे सर्वा नहीं है, यानी कि वही सब कुछ नहीं है, अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। Anybody is not fully independent. हर कोई कार्य कर रहा है प्रकृति के अनुसार, अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार उसे दूसरा कार्य करना पड़ता है। तो कोई भी स्वतंत्र नहीं है प्रकृति के नियमों से और अपने कर्मों से। तो भगवान ने ये बताया कि आप सर्व भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा के रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश कर रहे हैं। अंदर बैठे हुए भगवान परमात्मा के रूप में और समस्त प्राणियों को निर्देश देते हैं कि आपको क्या करना है। आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से बता रहे हैं कि शरीर परिवर्तित होने से ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है, भगवान ने कहा था 7.26 में वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेदन कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में घटित हो रहा है या भविष्य में घटित होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। इसी चीज को श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि भगवान भूत भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं, इसलिए उसके समस्त कारणों का साक्षी है। अब जो कुछ उन्होंने भूत में किया है और जो प्रेजेंट में वो कर रहा सब, और फ्यूचर में जो करने वाला उसके भी साक्षी है। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन उसी परमात्मा द्वारा हो रहा है, यानी भगवान निर्देशन कर रहे हैं और जीव कार्य कर रहा होता है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है और उस भौतिक शरीर द्वारा वाहन किया जाता है। बहुत ही सुंदर ये लाइन जो श्री प्रभुपाद ने बताया कि जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है। अब अंदर से भगवान परमात्मा के रूप में निर्देशन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है वो निर्देशन को नहीं सुनोगे, आप भगवान की बात को नहीं सुनना चाहोगे तो भी बाय फोर्स वो आपको सुनाएंगे, ऐसा नहीं है। वो आपको निर्देशन कर रहे हैं, लेकिन जितना आपका सरेंडर लेवल होगा उसी हिसाब से आपको निर्देशन। भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं 10.10 में, भगवान ने क्या कहा, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येनामाम उपयान्ति ते। वास्तव में जीव का अंतिम लक्ष्य कृष्ण को प्राप्त करना है। वो अंदर बैठा हुआ है इसके लिए इंस्ट्रक्शन देने के लिए, लेकिन जब तक इंस्ट्रक्शन आपको समझ में नहीं आएंगी उसकी, जब तक आपका सरेंडर लेवल हाईएस्ट स्टेज पर नहीं पहुंचेगा। जितना जितना सतत युक्तानाम भजताम, जो कंटिन्यूअस भगवान के नाम का भजन करता है। अब यहाँ पर ये बात समझ लेनी चाहिए, भगवान ने कहा है तेषाम सतत युक्तानाम। अब सतत युक्तानाम इज नॉट दैट ऑलवेज ही हैज अ बिग बैग इन द हैंड, ऑफ कोर्स नॉट। ये नहीं है कि कंटिन्यूअस माला उठा के बोलता रहे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। इट डज मीन कीर्तन मीन्स वन हु हैड डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड, फॉर द ग्लोरिफाइड ऑफ गॉड। यानी कि अपने पूरे जीवन को भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कैसे सर्वाइव कर रहा है, अपने जीवन में समस्त कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं सब कुछ छोड़ के एक नया हरिदास ठाकुर बन जाए, ऐसा नहीं है। भगवान ने ऐसा नहीं बताया है। हमें श्री प्रभुपाद ने क्या बोला, आप अपने कर्तव्यों का पालन करो और कृष्ण कॉन्शियसनेस को अपनाओ, कृष्ण अपने हर कर्म में कृष्ण को सेंटर में रखो। तो कृष्ण क्या कहेंगे, कृष्ण ने कहा फिर ददामि बुद्धि योगम तमेन, फिर मैं आपको ऐसी बुद्धि दूंगा जिससे ये नमाम उपयंत, जिससे आप अपने लक्ष्य को पहुंचो। तो इससे अगर हम लोग थोड़ा उल्टा देखेंगे तो भगवान ये कह रहे हैं जो सतत मेरा कीर्तन नहीं करेंगे तो उससे मैं बुद्धि नहीं दूंगा। अब यहाँ पर आज के श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मणं सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायां। वो कंटिन्यूअस आपको घुमा तो रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते भगवान को कि अगर भगवान ही मुझे बुद्धि दे रहे हैं तो मुझे ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दे रहे हैं। वो आपकी इच्छा, भगवान आपकी स्वतंत्रता के अंदर हस्तक्षेप नहीं करते। आप जो करना चाहते हो भगवान उसमें आपकी सहायता करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं 7.21 में, यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। मैं परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ हूँ, लेकिन जो जैसी जैसी श्रद्धा रखेगा मैं वैसे ही उसकी श्रद्धा को और भी इंक्रीज करूंगा। अब अगर हम भगवान के प्रति श्रद्धा रखेंगे, देखो यहाँ पर भगवान ने क्या कहा है कि मैं उसे बुद्धि दूंगा। अब जितना आपका सरेंडर लेवल होगा, जितना हम भगवान के ऊपर श्रद्धा रखेंगे, अगर 1% सरेंडर है तो भगवान 1% हमें क्वालिटीज देंगे, 1% बुद्धि देंगे। अगर 2% है तो 2% मिलेगा, अगर 3% है तो 3%, और अगर 100% हमारा सरेंडर लेवल भगवान की ओर है तो हमें 100% कृष्ण कॉन्शियसनेस में भगवान की कृपा से हम आ जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने कार्य में कोई, जैसे भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, भौतिक चीजों में इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो भगवान उसी हिसाब से हमें बुद्धि भी प्रदान करेंगे जो कि भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भगवान ने हमें कंप्लीट स्वतंत्रता दी है। बस हमारी थोड़ी सी श्रद्धा जब भगवान के प्रति उजागर हो जाती है गुरु और कृष्ण के कृपा से, हम यदि भगवान के चरणों में थोड़ी सी भी श्रद्धा उत्पन्न होती है तो क्या होता है, अ लिटिल इंटरेस्ट इंक्रीज द मोर इंटरेस्ट टुवर्ड द कृष्ण एंड फॉर मेकिंग द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड द प्रोग्रेस। जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी करते जाएंगे, फिर उसमें एक दफा भगवान के मंदिर गए, एक दफा कीर्तन सुना, तो फिर दिल करता है, फिर खोजता है जीव अंदर से, परमात्मा हमें निर्देशन दे रहे होते हैं। एक दफा आप किसी शुद्ध वैष्णव का संग करो, फिर हृदय होता है कि नहीं हमें वापिस से सुनना है, उसके मुख से सुनना है, उसके कीर्तन को अटेंड करना। एक अंदर से प्रेरणा मिल रही होती है कि मुझे उस कीर्तन में वापस एक बार जाना है। कहीं पर प्रसाद, इवन खाली प्रसाद भी खाते हैं ना किसी वैष्णव के हाथ का, या फिर किसी सत्संग में जाते हैं किसी क्लास में तो शुद्ध वैष्णव प्रसाद जो अर्पण होता है भगवान, हम वो खाते हैं, तो उससे इतनी कृपा हो रही होती है कि नहीं वो प्रसाद इतना टेस्टी था कि एक दफा वापिस खा के देखना है, वापिस मुझे बहुत दिल कर रहा है वो खा। तो अंदर से प्रेरणा दे रहे होते हैं, जैसे ही थोड़ी इंटरेस्ट डेवलप होती है तो फिर और इंटरेस्ट के लिए अंदर ब्राह्मण सर्वभूतानि। जैसे हम एक श्लोक भगवद गीता का समझ लेते हैं, फिर कैसे अंदर से प्रेरणा आगे भी सुनना है, आगे गीता सुन लेंगे, फिर कैसे दिल कर रहा है अभी से कि हमें भागवतम सुनना है, आगे बढ़ना, स्टेप आगे, ये हमें अंदर से परमात्मा प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम्हारा लक्ष्य बहुत आगे है। आपको एक वैष्णव सॉन्ग याद करते हैं फिर दिल करता नहीं, और भक्ति में कैसे आगे प्रोग्रेस, अंदर से प्रेरणा मिल रही होती है, पावर मिल रहा होता है। अब अर्जुन के पास क्या फॉर्चून था कि साक्षात अर्जुन हैड अ ग्रेट फॉर्चून, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड इज फ्रंट ऑफ हिम, एंड परमात्मा जैसे श्लोक में बताया गया, ईश्वर सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन, परमात्मा इज सीटेड इन द हार्ट। अब भगवान सामने खड़े हैं और परमात्मा अंदर बैठे हुए हैं, वो अंदर से गाइड कर रहे हैं और भगवान सामने खड़े हुए हैं, वो भगवान भी बता रहे हैं कि आपको कैसा करना। अब हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए इस कलयुग में कि हमारे पास, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनको डायरेक्ट से गाइड कर रहे थे, वो सिर्फ द्वापर युग में था, अब तो कृष्ण हमें डायरेक्ट सामने नहीं है, तो उतना सौभाग्य हमारा नहीं, ऐसा नहीं। हमारे पास साक्षात भगवान श्री कृष्ण है गाइड करने के लिए अपने नाम रूप में, कली काले नाम रूपे श्री कृष्ण अवतार। इस कलयुग में नाम भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, अभिनत्वान नाम नामिनो, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। यदि हम सदैव भगवान श्री कृष्ण के नाम का आश्रय लेंगे तो वही जो स्टेज अर्जुन का है वही हमारा, क्योंकि हृदय में तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय के अंदर ईश्वर परमात्मा के रूप में और सामने साक्षात अपने नाम के रूप में, और वो पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, वो पूर्ण शुद्ध है नित्य मुक्त, और उसके अंदर चैतन्य रस विग्रह, उसके अंदर पूरी चेतना है, वो सेम एज इट इज कृष्ण है, कृष्ण में और नाम में कोई अंतर नहीं है। तो जिस तरह कृष्ण आपको गाइड करता है उसी तरह से नाम आपको गाइड करता है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि इसका कोई हमारे पास कोई प्रमाण है? जी हाँ, ऐसी भक्तिदांत संश्रभुपाद जी अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किया वो एक साधारण प्राणी के लिए करना असंभव है, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। श्रील प्रभुपाद ने कोई भी भौतिक मैनेजमेंट डिग्री नहीं ली थी, और लेकिन फिर भी उनके पास कोई पावर नहीं था, कोई भी फिजिकल पावर नहीं था, ना उनके पास धन था, ना ही कोई दूसरे बहुत सारे सहयोगी थे उनके पास, मतलब नो मैन पावर नो मनी पावर कोई भी उनके पास, इवन श्रील प्रभुपाद के पास ना मोबाइल थी ना कंप्यूटर, वो एक नहीं दो नहीं सैकड़ों मंदिरों को, मतलब 100 से ज्यादा मंदिरों को एक साथ मैनेज कर रहे थे, और हर मंदिर एकदम बिल्कुल सही तरीके से हर चीज को की गाइडनेस देते थे कि किस तरह से आपको करना है। हर मंदिर में सेवा का स्टैंडर्ड एकदम सुपर तरीके से था। आज अगर देखा जाए तो कोई भी मतलब छोटा सा भी अगर केंद्र हम खोलते हैं, उसको मैनेज करने के लिए जो मैनेजर होता है, जो उसको बना रहा होता है, जो ऑर्गेनाइज कर रहा था प्रोग्राम, छोटे से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें कितना मुश्किल लग रहा होता है, उन सारे लोगों को एक मत बनाना और सब ऐसा लग रहा है। और श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, कैसे थे वो एकदम शून्यवाद थे, जो जिनको कुछ भगवान के विषय में पता नहीं था, कुछ उनको समझ में नहीं आता था कि क्या करा, मतलब उनको कैसे गाइड किया उन्होंने, ये सब कौन करा रहा था। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ही हु मैनेज इट्स ऑल रेवलेशन कमिंग फ्रॉम द परमात्मा विद इन, जो हृदय के अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं वो गाइड कर रहे हैं, और सामने नाम के रूप में भगवान जो है वो मुझे साक्षात प्रेरणा दे रहे हैं। यही चीज को श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आगे देखिए, अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा के द्वारा होता है, जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है, और इस भौतिक शरीर द्वारा वाहन किया जाता है, यानी कि जितना आप भगवान के प्रति जितनी आपकी श्रद्धा होगी उतना ही भगवान आपको अपनी कृपा प्रदान करेंगे, जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्योंकि भौतिक शक्ति के द्वारा मतलब जैसे हम कार्य करते हैं तो परमात्मा के निर्देशन द्वारा हमें एक शरीर मिलता है, उत्पन्न होते हैं हम दूसरे शरीर में, और जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अब जैसा आपके पास शरीर है उसके अनुसार आप कार्य करने के बाध्य हो। सुअर को यदि सुअर का ये योनि मिला है तो उसको हम बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं आप ये गंदगी मत खाओ, वो बना हुआ है उसका शरीर इसी प्रकार का कि उसको वही कार्य करना है। और ये जीव जो आत्मा जो मनुष्य के शरीर में बनी हुई, तो मनुष्य के शरीर का ढांचा जो भगवान ने बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि वो भगवान की सेवा कर सके। ये हाथ भगवान ने इसी बनाए हैं कि हम भगवान को प्रणाम कर सके, भगवान की सेवा कर सके, भगवान को भोग लगा सके, भगवान को श्रृंगार कर सके। नेत्र भगवान ने इसलिए बनाए हैं कि हम भगवान के दर्शन कर सके। करण दो बनाए हैं इसलिए, देखो जिह्वा एक बनाई भगवान ने ताकि बोलो कम, और कान दो बनाए ताकि ज्यादा श्रवण करें, ताकि हम ज्यादा ज्यादा श्रवण करेंगे और फिर जो निकलेगा मुंह से वो केवल भगवान के नाम का कीर्तन। तो जैसा हमारा शरीर होगा ना उसके अंतर्गत हमें कार्य करना शुरू करना पड़ेगा। अब आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा हुआ व्यक्ति कम तेज कार वाले कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है। अब देखो आत्मा वही है, जब वो प्रगति करने के लिए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहती है तो यदि वो मनुष्य के देह में है, यानी कि लिखा हुआ है देखो अत्यधिक तेज, तो इसमें वो बहुत इजीली भगवान की भक्ति कर सकता, उसमें हार्ड नहीं लगता भगवान की भक्ति करना। लेकिन यही जीव आत्मा को यदि उड़ाने करतूतों के कार्यवश किसी कुत्ते के अंदर डाल दिया जाए, किसी कॉकरोच खटमल के अंदर डाल दिया जाए तो भक्ति में इतना तेज तीव्रता से उन्नति नहीं कर सकते। इसे श्री प्रभुपाद जी बता रहे अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा हुआ व्यक्ति कम तेज मोटर कार में बैठे हुए व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों न हो, आत्मा तो वही है। उसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष प्रकार का निर्माण करती। अब जो जीव ने जैसे करतूत किए उस अनुसार उसके लिए शरीर बना दिया जाता है, शरीर के अंदर उसमें डालना पड़ता है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म करे। आज हमारे पास जो कुछ है वो सब हमारी पूर्व इच्छाओं के कारण है। हमने पुराने जन्मों में जो जो इच्छाएं की हैं, जो जो वासनाएं अधूरी रह जाती हैं, उन्हीं वासनाओं को पूरा करने के लिए, उन्हीं वासनाओं को पूरा करने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई है इस संसार में। और यदि आज भी हम अपने जीवन को वासनाओं में गर्क करते रहेंगे, सिर्फ ये चाहिए वो चाहिए इच्छाएं करते रहेंगे, तो कल फिर एक नया जन्म मिलेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया चैप्टर नंबर 3 टेक्स्ट नंबर 37, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धयेन मिह वैरिणम्। ये जो काम है ना, जो इच्छा है अर्जुन, विद्येन मिह वैरिणम्, यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि जब काम उत्पन्न होता है तो फिर आप दोबारा से जन्म आपको लेना पड़ता है, जन्म जन्मांतर के चक्कर में। अभी देखो कुछ लड़कियां बोलती हैं इस आपको है ना मैं अगले जन्म में प्राप्त करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अगले जन्म में, इस जन्म में ऐसा सिचुएशन नहीं बन रहा है तो अभी मर जाएंगे, नेक्स्ट जन्म में आपको प्राप्त करेंगे। फिर पता चले उसको नेक्स्ट जन्म में उसको वैसे ही कुत्ता बनना है तो इसको कुतिया बनना पड़ेगा कि उसी को प्राप्त करना है। तो ये जो इच्छाएं हैं वो बारंबार हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाती हैं। फिर इस काम को काम का क्या करें जो हमारे साथ इतना बुरा करने वाला है, जिसकी वजह से हमें बारंबार 84 लाख योनियों में फंसना पड़ रहा है। उसका सॉल्यूशन बताया भगवान श्री कृष्ण चैप्टर 3 टेक्स्ट नंबर 41 में। भगवान कहते हैं तस्मात्त्वमिन्द्रियाः यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मान प्रजहीनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम्। क्योंकि ये काम तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और ज्ञान और विज्ञान सबको ढक देता है, ज्ञान विज्ञान नाश कर देता है तुम्हारे। जो ज्ञान है क्या है, ज्ञान केवल इतना है कि मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान को संतुष्ट करना है। और जब काम उत्पन्न हो जाता है तो वो ज्ञान आवृत हो जाता है, ज्ञान नाश हो जाता है, फिर हम क्या सोचते हैं कि मैं स्वामी हूँ, मुझे तृप्ति चाहिए, इंद्रिय तृप्ति चाहिए। ये फर्क है ज्ञान में और अज्ञान में। तो जैसे ही काम उत्पन्न होता है, ज्ञान यानी कि मैं भगवान का दास हूँ, उनको संतुष्ट करना, ये ढक जाता है। तो ये बताया भगवान श्री कृष्ण ने उसको कैसे करना है, तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि यादौ नियम्य भरतर्षभ। इसलिए हे भरत श्रेष्ठ, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करो। वास्तव में हमारा लक्ष्य मन को वश में करना है। अब जैसे आपके घर में अगर कोई चोर आ रहा है, लेकिन आपने गेट जो है मेन गेट को एकदम सही तरह से सिक्योरिटी पूरी है, आपने उसको बंद करके रखा है, तो उसके आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना, वो तो आ ही नहीं सकता है। लेकिन अगर इत्तेफाक से सिक्योरिटी सही नहीं है, आपका गेट खुला रह गया, अब वास्तव में फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है यदि आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन इस जीव जब ये जीव प्रकृति के अंदर चला जाता है तो मन को वश में करना मुश्किल है। इसलिए क्या करना है, अब अगर दरवाजा खुला रह गया तो वो क्या करेगा, चोर आने की कोशिश करेगा, और आप अंदर से क्या करोगे, आपको अंदर से पता चल गया कि चोर आ रहा है, तो आप जोर से दरवाजा बंद करने की कोशिश करोगे, दरवाजा बंद करके कुंडी देने की कोशिश करोगे कि चोर वापस ना आए। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पर देखो ये बताया, तस्मात् त्वम इंद्रियाण यादौ, सबसे पहले इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि मन तो अभी तुम्हारा कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो तुम क्या करो, सबसे पहले प्रारंभ में, आदव का मतलब होता है स्टार्ट में, इंद्रियों को वश में करो, ताकि वो जो काम इच्छा है वो अंदर आ न सके। इंद्रियों को नियंत्रण कैसे करना है, कि इंद्रियों को खुली छूट नहीं देनी है कि हाँ बाबा तुमको जो देखना है देखो, क्योंकि अगर मन नियंत्रित है फिर आपके सामने भले सांसारिक विषय वासनाओं की करोड़ों चीजें भी आ जाएंगी, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मन हृदय में केवल भगवान। लेकिन क्योंकि हृदय जो है वो मन को इतना कंट्रोल, भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया श्रीमद् भगवद गीता में एकदम, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से चैप्टर 6 टेक्स्ट नंबर 34 में कहा था, संचलम ही मनः कृष्ण परमार्थि बलव दृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। कृष्ण चुकी मन चंचल उचंखल हठिला तथा अत्यंत ही बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। जैसे वायु को वश में करना अर्जुन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, भगवान की जो ये अपरा प्रकृति है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इनको वश में करना बहुत कठिन है। अग्नि को, अग्नि अगर भड़क उठे उसको, पृथ्वी अगर उसमें भूकंप आ जाए तो उसको, जल में यदि वेग आ जाए तो उसको, अग्नि और ये वायु को वश में करना ये इम्पॉसिबल है। लेकिन अर्जुन यहाँ पर कह रहा है कि ये तुम्हारी अपरा प्रकृति को वश में करना मुझे बहुत ईजी लगेगा, ये इससे ज्यादा मन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है मुझे। चंचलम ही मना कृष्ण, क्योंकि ये इतना चंचल है, ये तो दिखता नहीं ना। अब देखिए तो मैं उसे रस्सी से बांध कर रख दूं, अपने तीर से, मतलब तीरों के उसमें बांध दूं पाश में, लेकिन क्योंकि दिखता ही नहीं है तो मैं उसको कैसे बांधूं। मन को कंट्रोल करना मुझे बहुत कठिन लग रहा है, इससे ज्यादा तो आसान हवा को वश में करना है। इसके रिप्लाई में भगवान श्री कृष्ण 6.35 में कहा, असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे भगवान ने कहा कि हे महाबाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना बहुत ही कठिन है। भगवान भी मान लिया, भगवान ने भी कहा असंशय, मुझे कोई संशय नहीं है महाबाहो, अब यहाँ पर महाबाव कहा कि तुम तो महाबाव हो, तुम्हारे पास तो बहुत बहुत ज्यादा पावर है, तुम्हारे लिए भी मुझे पता है, मुझे कोई संशय नहीं है, मनो दुर्निग्रहम चरम, कि इतना ज्यादा दुर्निग्रह है, इतना ज्यादा चंचल है कि इसको वश में करना तुम्हारे लिए कठिन है। तो जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं हे महाबाहु तुम्हारे लिए कठिन है, तो फिर हम जैसे साधारण प्राणी जो छोटी छोटी चीजों में आसक्त हो जाते हैं, तो फिर उनके लिए तो बहुत ज्यादा कठिन हुआ ना। लेकिन भगवान ने यहाँ पर उसका बताया तरीका, अभ्यास है ना, तो कौन थे वैराग्य है ना चगृहते, लेकिन उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है, यानी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन करना क्या है वो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं हमें 3.41 में। तस्मात् सर्वेन्द्रियाणि यादौ नियम्य भरतर्षव, इंद्रियों को सबसे पहले नियमित करो, इंद्रियों को आप ऐसी छूट मत दो कि वो अपनी मर्जी से कार्य करें, क्योंकि इंद्रियां जब विषयों की तो और आकर्षित हो जाएंगी तो मन भी उस विषय की ओर आकर्षित हो जाएगा, लेकिन यदि इंद्रियां अपने परम लक्ष्य कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाएंगी, हृदय में वही चीज आएगी जो इंद्रियां जो उसको दिखाएंगी। तो यदि इंद्रियों से हम भगवान के दर्शन करेंगे, कानों से भगवान की कथा श्रवण करेंगे, और हाथों से भगवान की सेवा करेंगे, और मुख से भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, और भगवान का प्रसाद स्वीकार करेंगे, और श्री भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया दूसरी इंद्रियां वश में नहीं होती हैं, तो जाए भाड़ में उनको छोड़ो, सिर्फ ये जो जुबान है ना, जो कर्म इंद्रिय भी है और ज्ञान इंद्रिय भी है, और जुबान के जरिए यदि आप खाली प्रसाद हम खाते हो ना, और कुछ भी नहीं, जो प्रसाद नहीं है वो स्वीकार नहीं करो, खाली प्रसाद खाते हो, और उसी जुबान से यदि भगवान के पवित्र नाम का जप करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस जुबान से यदि भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है, भगवान अभी देखो नाम गुण लीला ये सब एक जैसे, भगवान की कथा का यदि हम गान करते हैं, भगवान की लीलाओं का गान करते हैं, भगवान के विषय में मतलब बात करते हैं, प्रज्वल पर नहीं करते, और उसी जबान से यदि हम भगवान के प्रसाद को स्वीकार करते हैं, तो भी आपको परफेक्शन प्राप्त होने वाली है। सिर्फ एक इंद्रिय को यदि हम कंट्रोल कर सकते हैं तब भी, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रारंभ में इंद्रियों को वश में करो, और इस पाप के महान प्रतीक यानी काम, अब इंद्रियां यदि अपनी इच्छा से काम कर रही हैं तो वो हवस है, वो आपको भड़काएगा, वो आपको अलग अलग जगहों पे लेकर जाएगा, वो आपको पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम इसके चक्कर में, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में, और जन्म जरा मृत्यु व्याधि दुख दोषान, ये सब क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में काम उत्पन्न हो रहा है, इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, अपने आप को तृप्ति, निज इंद्रिय तृप्ति वाचा तारा नाम काम, तो इस काम को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् इंद्रियाणि वा यादव नियम या भरतः, सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो, और पापमानम प्रज, इस तरह से क्या होगा, ज्ञान के दमन करने वाले इस महान पापी, किसको, जिसको पहले भगवान ने बताया ना काम जो है वो बहुत शत्रु है, इसका वध कर दो। इसका वध कैसे करना है, इंद्रियों को काम इच्छा में प्रवृत्त होने नहीं देना, जैसे अब पहले से खुला था दरवाजा, चोर आ रहा था, आपने धक्का देकर वापस उस चोर को बंद कर दिया, भले हृदय में इच्छा उत्पन्न हो रही है, लेकिन इंद्रियों को आपको ये परमिशन नहीं देनी है कि चोर दिल में आ रहा, बोले किसको बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पर तो बहुत सारे लोग बोले दिल करता है इसलिए नॉन वेजिटेरियन नहीं छोड़, मतलब खाने का दिल करता है तो क्या करूं, अभी मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं, तो इंद्रियों को भी छूट दे दी, हाँ बस खाओ जाओ गंदगी खाओ जो खाना है खाओ, और फिर बाद में मरो वही तुम्हें खाएगा आकर। तो हृदय को, हृदय के अंदर आत्मा नहीं बोल, कोई कोई लोग बोले मेरी आत्मा बोलती है, आत्मा नहीं बोल रही है, ये मन के अंदर जो काम है ना वो बोल रहा होता है, ये ख्वाहिशें जो होती है वो काम इच्छा करता है, और इंद्रियों के द्वारा हम उसकी इस इच्छा को पूरा करते हैं, लेकिन भगवान यहाँ पर इंद्रियों को वश में करने के लिए बोल रहे हैं तस्मात्, सबसे पहले तो अपनी इंद्रियों को वश में कर दो, उनको कोई भी ऐसा कार्य करने नहीं दो जो कि आप काम की वजह से करो, यानी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए नहीं, बल्कि इंद्रियों को आप भगवान की सेवा में लगाओ। तो आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, क्योंकि जैसे हमारी इच्छा होती है उसी के अनुसार हमें एक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म करते हैं कर सके। जो भी हमारी इच्छाएं थी उसी के अनुसार हमको कार्य करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त की जाती है। जीव स्वतंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी उस शरीर में भी, अब जो नया शरीर आया है, तो क्योंकि हमें पिछले शरीर की जो हमारी इच्छाएं थी उसके अनुसार मिला है ना, तो इस शरीर में हमें डेफिनेटली उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं व्यक्तियों के साथ हमारा संयोग होना है। अब जैसे हम लोगों को नहीं पता होता है, जैसे अपनी मर्जी से हम पिता चॉइस नहीं करते, अपनी मर्जी से माता चॉइस नहीं करते, अपनी मर्जी से बहन भाई चॉइस नहीं करते, वो सब क्योंकि हमने जिसके साथ जो जो कार्य किया है उसी प्रकार से हम लोगों को आज वापस से जन्म, जिस जिसके साथ हमने जो जो वादे किए हैं, जो जो जिनको दुख पहुंचाए हैं, जो जो सुख पहुंचाए हैं, उसके रिजल्ट में हमारा दूसरा जन्म है ना। जैसे एक लड़की जब उसका ब्याह होता है तो वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के एक नए घर में चली जाती है, पति के लिए अपने जीवन को पूरा समर्पित कर देती है, तो वो नया व्यक्ति कैसे हो सकता है? वो तो वही पिछले जन्म के जिसके साथ उसने कोई अधूरे कार्य छोड़े होंगे या जिसके साथ कोई वचन लिया होगा, और पति भी अपने माँ बाप को छोड़ देता है उस पत्नी के लिए जो अभी आई है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं बच्चों के लिए, तो ये नए नहीं होते हैं। जो हमने पिछले जन्म में जिसके साथ जो जो मतलब किए हैं कर्म जो है उनके प्रतिफल, इसीलिए हम स्वतंत्र नहीं है। हम कोई भी, भले हम लोगों को स्वतंत्रता है इच्छा करने की कि हम भगवान, भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति आप कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है कि आप भगवान को सरेंडर करो या माया को। एक जीव के पास सिर्फ इतनी स्वतंत्रता है कि वो किसकी ओर सरेंडर करना चाहता है, माया को या भगवान को। अगर वो भगवान को सरेंडर करता है तो माया उसके पास नहीं आ सकती, लेकिन यदि वो माया को सरेंडर करना चाहता है तो भगवान उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी, जब दिल करेगा तब मेरे पास आना, लेकिन अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार वो स्वतंत्र नहीं है, उसको उसी कर्मों का भोग भोगना है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतएव उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत होकर हो जाए, और अगले श्लोक का यही आदेश है। अब अगला श्लोक जब हम पढ़ेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी बताएंगे कि भगवान के आप अधीन हो तो आपको क्या करना है, भगवान की शरण ग्रहण करनी है, और यही दैट इज द परफेक्शन ऑफ रेनाउंसिएशन, यही सिद्धि है संन्यास की सिद्धि, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी, क्योंकि हृदय के अंदर बैठा हुआ वो निर्देश तो कर ही रहा है, और यदि हम जितना सरेंडर होंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, उतनी ही परफेक्शन आएगी हमारे अंदर, उतना ही प्रोग्रेस करेंगे कृष्ण भावनामृत में, और उतना ही अपने लक्ष्य की जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, उसकी ओर ज्यादा अग्रसर होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।